ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 हम लोग पढ़ रहे हैं 4th chapter 16th verse और उसके आगे 14th chapter 16th verse. किम कर्म किम अकर्मेति,
किम कर्म किम अकर्मेति,
कव्यो अपि अत्र मोहितः,
कव्यो अपि अत्र मोहितः,
तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि,
तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि,
यज्ञात्वा मोक्षसे शुभा,
यज्ञात्वा मोक्षसे शुभा।
कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, इसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। अगर कोई श्लोक दिमाग में चक्कर लाने वाला तो ये श्लोक है और इसके अगले भी, एक्चुअली इसके अगले वाला। बट भगवान कुछ इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं यहाँ पर, मगर उससे पहले मैं जरा इन्वोकेशन कर लूँ। ओम अज्ञानाति मिरंदस्य ज्ञानांजन शलाकाय शिरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सो अभी तक हमने 4th chapter में पढ़ा कि कृष्णा कौन है। जब हम कर्मयोग की बात कर रहे थे तो हमने डिस्कस किया था कि कर्मयोग मतलब कि भगवान के लिए काम करना नहीं, भगवान के लिए कार्य करना, कृष्ण भावना भावित कार्य को कर्म कहते हैं। कर्मयोग अपनी शुद्ध अवस्था में, कर्मयोग अपनी शुद्ध अवस्था में अच्छा कर्मयोग भगवान के लिए कार्य करना होता है बिना किसी इच्छा के, है नी। और उस अच्छे या शुद्ध कर्मयोग को हम भक्ति योग भी कह देते हैं क्योंकि वो भक्ति योग का ही अंग बन जाता है। और उसमें हमने डिस्कस किया था कि भगवान इस अध्याय में तीन चीजें बात कर रहे हैं। जब हम कर्मयोग की बात करते हैं, भगवान के लिए काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली भगवान को तो जानना ही पड़ेगा, और ये भी जानना पड़ेगा कि हम कौन है, जो काम कर रहे हैं वो कौन है, उस काम करते वक्त उसकी चेतना क्या होनी चाहिए, है नी। और ये भी जानना पड़ेगा कि भगवान के लिए जब काम किया जाता है तो अलग अलग प्रकार के कार्य हैं, वो क्या क्या कार्य हैं। सो भगवान ने अभी तक 15th श्लोक तक अपने बारे में चर्चा की कि वो कौन है। अब कृष्णा चर्चा कर रहे हैं कि कर्म का स्वरूप क्या है, कर्म होता क्या है। भी जब तुम मेरे लिए काम करोगे, कर्म योग मेरे लिए कार्य कर रहे हो, वो चीज क्या है, वो कितने तरीके का है कर्म। नहीं, एक तो मेरे लिए काम करना कार्य, मगर वैसे कर्म का स्वरूप क्या होता है ये चर्चा कर रहे हैं। एक्टिविटी का मतलब क्या है, एक्शन का मतलब क्या है, इन एक्शन का मतलब क्या है, ये सारी चीजें बताएंगे। और उसके आगे भी बताएंगे कि कर्म करने वाले की चेतना क्या होनी चाहिए, वो भी समझना जरूरी है। नहीं, वो तो वैसे हमने जनरली ज्ञान योग में समझ लिया, मगर भगवान यहां पे भी बताएंगे कि कौन है वो व्यक्ति जो कर्म करता है। ओके, कृष्णा कह रहे हैं किम कर्म किम अकर्म इति, कर्म क्या है अकर्म क्या है। कव्यो अपि अत्र मोहितः, प्रभुपाद इसी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो कर्म किया जाता है वो प्रमाणिक गुरु के आदर्श में होना चाहिए। नहीं, पिछले श्लोक में भगवान बता रहे हैं पूर्व पूर्वतरम कृतम, जो पहले के मुमुक्षी लोगों ने जिस तरह से कर्म किया उस तरह से कर लो, सिंपल है, प्रॉब्लम क्या है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। मगर इस ऐसा कर्म स्वतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी व्याख्या अब इस श्लोक में कर रहे हैं। कोई पूछ सकता है कि जो पिछले जो लोग हैं उनकी तरह क्यों कर्म करें, है नी, वो 5,000 साल पहले आए यार, अब जमाना बदल गया है, यही कहते हैं ना, जमाना सब बदल गया है, वो बैकवर्ड थे, मतलब अगर 5,000 साल पहले कोई साइकिल पे जा रहा है तो अब हम क्यों साइकिल पे जाएं? अब गाड़ी में चले जाओ। तो भट्ट प्रभुपाल लिख रहे हैं, क्वेश्चन आता है, नहीं आता है, नहीं आता है, अगर 5,000 साल पहले आप झोपड़ी में रह रहे हो तो अब क्यों रहना है? जो कमरा है एसी है सेम, उनको क्यों फॉलो करना है? यही लोग कहते हैं। उसका आंसर भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। क्यों भैया? जो पहले के लोग कर रहे थे, पहले को मतलब साधु, जिस तरह से वो मुझे समझ रहे थे, जो कार्य कर रहे थे, उनको देख के कार्य करो, वो करते रहो। क्यों? क्योंकि श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित में कर्म करने के लिए मनुष्य को प्रमाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना होता है जो गुरु गुरु परंपरा में हो, जैसा कि अध्याय के प्रारंभ में बता चुका है। श्री प्रभुपाद यहाँ पे एक लाइन लिख रहे हैं इसी सेकंड पैराग्राफ में, अतः परंपरा के पूर्ववर्ती अधिकारियों के पदचिन्हों का अनुसरण करना आवश्यक है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी कृष्ण भावना अमृत के आदर्श कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, श्रील प्रभुपाद इंग्लिश में लिख रहे हैं, मुझे लाइन बड़ी अच्छी लगी। अदरवाइज मोस्ट इंटेलिजेंट मैन विल बी बिविल्डर्ड रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। और वैसे श्रील प्रभुपाद ही लिख रहे हैं पर्पट में सब कुछ, कोई आचार्य ऐसा कुछ नहीं लिख रहा इतने डिटेल्स में पर्पट, तभी मैं वो देख रहा था कि और लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं, बट प्रभुपाद ने बहुत अच्छा पर्पट लिखा है कि क्यों होना चाहिए। बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। कव्यो अप्यत्र मोहयता, कव्यो मतलब होता है बुद्धिमान व्यक्ति। पहले बुद्धिमान व्यक्ति को कवि कहते थे, क्यों? आपका बुद्धिमान व्यक्ति को इंजीनियर क्यों नहीं कहते थे? आजकल तो ऐसे ही है ना, आजकल इंजीनियर बुद्धिमान है, डॉक्टर बुद्धिमान है, कवि क्या है? झल्ला आदमी है, नहीं कुर्ते और पैंट में घूमता रहेगा बड़े बड़े बाल करके, यही है ना कवि? यही है ना कवि?
जो कुछ नहीं करते वो कवि बनते
हैं। जो कुछ नहीं करते वो कवि बनते हैं। सो मगर पहले पहले जमानों में कवि को ही बुद्धिमान कहते थे। क्यों? क्योंकि इंजीनियर और इंजीनियर्स को तो शूद्र कहते थे, सॉरी टू से अगर कोई है इंजीनियर तो, क्योंकि फलाद इंजीनियर था, शूद्र थे। क्योंकि ये जो प्रभुपाद लिख रहे हैं, इंजीनियर्स क्या होते हैं, मतलब अपने हाथ से काम करते हैं ना, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, मैनुअल काम है, जनरली दिमाग है मगर फिर भी मैनुअल काम है। कंप्यूटर इंजीनियर वो थोड़ा दिमाग वाला काम है, फिर भी मशीन से काम कर रहे हो, जो मशीन से ज़्यादा इंटरेक्ट करते थे वो शूद्रों का काम था। जैसे मान लीजिए जो जो नहीं होता था, क्या कहते हैं लोहा बनाने वाला, क्या कहते थे उसको? लोहार या पॉटर, पॉटर पॉटरी क्या कहते थे उसको? कुम्हार। तो लोहार को भी आना चाहिए लोहा कैसे पिघालना है, कैसे बनाना है। अब आप लोहार बन जाओ या आप स्टील इंडस्ट्री के टेक्नोलॉजिस्ट बन जाओ, एक ही बात है, वो बड़ी बात नहीं है, वो थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड है, वो थोड़ा सिंपल है, डजंट मैटर मच। प्रभुपाद कह रहे हैं सारे वो लोग करते थे। ब्राह्मण जो थे, जो इंटेलिजेंट लोग थे, वो ये सब नहीं करते थे। वो करते थे कवि, वो कवि होते थे। कवि मतलब कि वो लोग भगवान की प्रशंसा करते थे, नहीं ब्राह्मण ही करते, या संसार के बारे में कुछ समझ रहे हैं, नॉलेज का काम कर रहे हैं, नहीं। और नॉलेज को जनरली कवि बोलो, कविता में नॉलेज लिखी जाती है। क्यों? क्योंकि कवि मतलब, कवि यहां पे मतलब ये नहीं कि वो गा रहे हैं पागलों की तरह। कविता जो होती है, जब व्यक्ति लिखता है तो उसमें बहुत ज्यादा विचार होता है, होता है नहीं होता है, सोच के लिखता है ना कविता। ऐसे पैराग्राफ लिखोगे तो शायद विचार इतना ना हो, कविता में बहुत सोचना पड़ता है, कविता में डेप्थ होती है, हर लाइन बहुत डीप होगी, है नहीं? और अलग अलग मतलब होते हैं कविता के, प्रत्यक्ष परोक्ष, उसके अंदर एक लेवल होगा, उसके अंदर एक लेवल होगा, यही कविता होती है ना। कविता अच्छी कविता वो होती है, आप उत्तम मध्यम और निकृष्ट कविता भी होती है, उत्तम कविता वही होती है नहीं? सो इसलिए कविता में बहुत सोचना पड़ता है, बहुत मीनिंग छुपे होते हैं, इसलिए बुद्धिमान व्यक्तियों को कवि कहते थे, क्योंकि जो भी बोलते थे उनकी बात बहुत गंभीर होती थी, उनका ज्ञान बहुत गंभीर होता था। कवि शब्द मतलब गंभीर, गंभीर मतलब बुद्धिमान। और सबसे गंभीर व्यक्ति कौन है? जो भगवान को समझने की कोशिश कर रहा है, बुद्धिमान होना नहीं चाहिए। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं, इसलिए प्रभुपाद यहां पे कवियों को बुद्धिमान ट्रांसलेट कर रहे हैं। देख लो आप, कवि वो नहीं कर रहे, कविता गाने वाला। कवि अप्यत्र मोहिता, वो भी मोहित हो जाते हैं। दैट्स इंपॉर्टेंट, वो भी मोहित हो जाते हैं। तो यहां पे बुद्धिमान पुरुष जो शास्त्रों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान को समझने की कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं, जो कृष्णा भक्ति को समझने की कोशिश कर रहे हैं, प्रभुपाद यहां पे ये पॉइंट ला रहे हैं। बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य कृष्ण भावना अमृत के आदर्श कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाता है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, लोग बुद्धिमान पुरुष मोहित हो जाते हैं, भक्ति को नहीं समझ पाते। जो भी व्यक्ति, कितने सारे लोग आध्यात्मिक लाइन में हैं, उनमें से शायद एक ही समझ पाएगा कि भक्ति का स्वरूप क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है। कर्म मतलब भक्ति, शीला प्रभुपाद लिख रहे हैं यहां पर। कर्म मतलब भक्ति, कर्मयोग मतलब भक्ति योग, ये बताया था मैंने। और अकर्म मतलब अकर्म भी आगे आ जाएगा। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि अज्ञात्वा मोक्षस्य शुभाति, समझ गए ना, समझ नहीं आएंगे भक्ति क्या है। अब पढ़ते रहो, शास्त्र पढ़ते रहो, कुछ लोग ज्ञानी बन जाएंगे शास्त्र पढ़ पढ़ के, कुछ लोग कर्मकांडी बन जाएंगे, नहीं, कुछ लोग न्याय वैशेषिका सांख्य, इतने बड़े बड़े फिलोसोफर्स हैं, अलग अलग सिद्धांत निकाल देंगे, भक्ति को नहीं, सब शुद्ध भक्ति को समझना मुश्किल है। और फिर प्रभुपाद लिख रहे हैं, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, भगवान कह रहे हैं इसलिए मैं तुम्हें कर्म क्या है बताऊंगा, अब कर्म का स्वरूप क्या है बताऊंगा, भक्ति होती क्या बताऊंगा, भक्ति करने वाला कैसा व्यक्ति होता है वो बताऊंगा मैं तुम्हें, नहीं कर्मयोग। तो प्रभुपद यहां पे लिख रहे आखिरी उसमें लाइन में, आखिरी पैराग्राफ के सेकेंड लास्ट लाइन में, अतः भगवान अपने भक्तों पर अहितु की कृपावश स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म, अहितु की कृपावश बता रहे हैं। शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं यहां पर कॉजलेस मर्सी से, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, अब मैं तुम्हें प्रवक्ष्यामि मतलब क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद, अब मैं तुम्हें कहूंगा अपनी कृपा से। सो भगवान अपने भक्तों को खुद डायरेक्शन दे रहे हैं, कितना अच्छा है, नहीं मतलब आप पढ़ सकते थे पहले, मतलब पहले के प्रभुपाद लिख रहे हैं ना कि पहले के जो आचार्य हैं, ब्रह्मा शिव नारद मनु कुमार कपिल प्रहलाद भीष्म सुखदेव यमराज जनक बवारा महाजन है, उनकी टीचिंग्स पढ़ लो समझ लो। मगर प्रॉब्लम यह है कि उनकी टीचिंग्स पढ़ के भी हम स्टूपिड लोग समझ नहीं पाएंगे, हम बेवकूफ लोग समझ, हमारे लिए बहुत मुश्किल है समझना है सारी चीजें। इसलिए भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें बता रहा हूं, भगवान अहितु की कृपा से। अच्छा, अहितु की कृपा का मतलब क्या, कोई बताए क्या मतलब होता है, क्या कहते हो? वो तो समझ ही आ रहा है, अहितु की क्या कहते हो, अहितु की व्हाट डू यू से? वेल, अहितु की कृपा का मतलब होता है कि ऑफ कोर्स लिटरल ट्रांसलेशन है, जिसका कोई कारण नहीं, जिसका कोई हेतु नहीं है। अहितु की कृपा होता है मतलब, जैसे मान लीजिए आप सड़क पे जा रहे हो, आपने गरीब को देखा, आपने कहा हाय बेचारा रोटी नहीं मिल रही, आपने उसको रोटी दे दी, तो ये कौन सी कृपा हुई? ये हेतु की कृपा है, आपकी कृपा का कोई हेतु है। आपने गरीब को बीमार को देखा, आपने रोटी दे दी, नहीं हेतु है इसका, हेतु है ना, कुछ कॉज है ना, कोई पिट रहा आपने उसको बचा लिया, ये अहितु की कृपा है। एक होती है अहितु की कृपा, अहितु की कॉजलेस मर्सी, उसका कोई कारण नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने जब गरीब को देखा तभी कृपा आ रही है और फिर आप पार्टी में गए तो भूल गए सब कुछ, है नहीं। अहितु की कृपा है, अगर आपने गरीब को देखा तब भी कृपा आ रही है, पार्टी में गए तब भी आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हो, नहीं यार बेचारे इतने सारे गरीब लोग हैं, नहीं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब मैं गरीबी हटाने की बात नहीं कर रहा, इतने सारे गरीब लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए। जब पार्टी में बैठे हो चाहे कहीं भी बैठे हो, आपके हृदय में बार बार मदद करने की वो अपने आप क्या कहते हैं उसको भावना आती जा रही है, वो किसी हेतु पे निर्भर नहीं है, अपने आप हो रहा है वो, उसको कहते हैं हेतु कृपा। ये एक बहुत सिंपल एग्जांपल है। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे थे कि जो फूड फॉर लाइफ है, अब जैसे लोग गरीबों को बांटते हैं प्रसाद, वो कहते हैं गरीबों के अमीर को भी बांटो, इसको कहते हैं अहितु की कृपा। अहितु क्या, कोई ऐसा नहीं गरीब को बांट रहे हैं, सबको जाना चाहिए। कोई अगर दुनिया में कोई नहीं होगा आदमी, अगर मान लीजिए सारे आदमी गायब हो गए, सपोज मान लीजिए सारे आदमी गायब हो गए, ठीक है, कोई एक भी गरीब नहीं बचा, एक भी अमीर नहीं बचा, आप कहोगे फिर आप कहोगे क्या कहोगे, फिर कृपा, आप कहोगे फिर तो कृपा का मतलब ही नहीं है। नहीं, अहितु की कृपा फिर भी रहेगी, वो निर्भर नहीं करता कि आदमी है नहीं है। फिर आप सोचोगे कि ओह ठीक है, इस ब्रह्मांड में, इस धरती पे कोई व्यक्ति नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं तो होंगे, मुझे कृपा करनी है। अहितु की कृपा मतलब कृपा किए बिना नहीं रह सकते, वो अहितु की कृपा है। इसलिए भगवान अपने वैकुंठ में बैठ के भी कृपा के बारे में सोचते रहते, आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड कहते नहीं है, भगवान अपने वैकुंठ चले गए, सब कुछ भूल गए, ऐसा नहीं होता। वो हेतु की कृपा में होता है, नहीं, जब तक हेतु है तब तक कृपा आ रही है, हेतु खत्म नहीं, अहेतु की कृपा में ऐसा नहीं है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान अपनी अहेतु की कृपा से बता रहे हैं अर्जुन को ये सब, या दूसरे शब्दों में भगवान ने अपने अहेतु की कृपा से ही पहले के लोगों को बताया था, ब्रह्मा, शिव, नारद, कपिल, प्रहलाद, उनको भी अहेतु की कृपा से बताया था, मगर केवल मानसिक चिंतन द्वारा निर्धारित करना कठिन है कि धर्म या आत्म साक्षात्कार क्या होता है। 4 chapter 16th verse। सो मन से पता लगाना बहुत मुश्किल है पढ़ के, इसलिए भगवान खुद एक्सप्लेन कर रहे हैं, भगवान को पता हम कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको जानकर तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है ना, सिंपल हो गया।
वो जो है आप चाहे वैष्णव ना हो उस पर भी हम कृपा करें,
ये तो एग्जांपल था, जस्ट एन एग्जांपल समझाने के। मैं नहीं कह रहा गरीबों को खाना खाते रहो, हमारा कोई मतलब नहीं है उससे। हमारे लिए गरीब कौन है, हमारे लिए जिसके पास भक्ति नहीं है वो गरीब है। इसलिए भगवान बता रहे कर्म क्या है, कर्म क्या है, मैं तुम्हें बता रहा हूं। सो ओके, अब नेक्स्ट आ गया, भगवान समझा रहे हैं कर्म का स्वरूप क्या है। दिस इज इंटरेस्टिंग। कर्मणोपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मण, अकर्मणश्चापि बोधव्यम, गहना कर्मणोति। भगवान कह रहे हैं कर्म के बारे में को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। अब प्रभुपाद इसकी पहली लाइन में लिख रहे हैं, यदि कोई सचमुच ही बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म, विकर्म के अंतर समझना होगा। आप डिसमिस नहीं कर सकते इस बात को, मैं नहीं समझूंगा कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, मैं तो गरीबों को रोटी बांटूंगा, करते रहो। तुम्हारे सोचने से क्या है, तुम्हारे सोचने से दुनिया थोड़े ना बनी थी और ना ही तुम्हारे सोचने से दुनिया चलेगी। सो भगवान कह रहे हैं इसलिए इसको समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझोगे कर्म, अकर्म, अविकर्म क्या है, तो हो सकता है भक्ति कर रहे हो मगर भक्ति में आप करते करते क्या हो जाए, अशुद्ध भक्ति करने लगो, इच्छाएं आ जाएंगी, नहीं आ जाएंगी, भक्ति का स्वरूप अशुद्ध हो गया। हो सकता है आप कर्मयोग कर रहे हो मगर कर्मयोग किस तरह कर रहे हो, अशुद्ध कर्मयोग, शुद्ध कर्मयोग नहीं कर रहे। इसलिए एग्जैक्टली जानना है कर्मयोग क्या है, नहीं आपको जानना पड़ेगा कि भाई घी क्या होता है, तभी तो शुद्ध घी खरीदोगे। अगर आपको पता ही नहीं घी क्या है तो कोई नकली घी बेच देगा, आप कहोगे आह क्या स्मेल आ रही है, अब भैया आपको पता ही नहीं स्मेल होती क्या है, अब हमें सुखाओगे तो कहेंगे भैया उल्टी आ रही है क्या है स्मेल, ये तो घी होता है, कभी घी देखा है क्या होता है, तभी तो लोग लुट रहे हैं इन डाल्टा। तो पहले 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 वो नहीं करता डाल्टा घी, वो ऐड भी आता था ना, वो खाना बन रहा है वो धुआं उड़ के आ रहा है, वो खिंचता हुआ चला जा रहा है। फिर जब हमने जब असली, हमको भी पता था जब असली घी देखा, अब तो उल्टी आती है, मतलब तो डाल्टा बंद हो गया, मतलब आप सूंघ लोगे ना वो ऐसा लगा गोबर मिला रखा उसमें, नॉन सेंस। अगर असली घी सूंघ लोगे आप, इम्पॉसिबल है, आप नहीं खा सकते। सो हमें जानना पड़ेगा असली कर्मयोग क्या है, असली कर्मयोग, शुद्ध कर्मयोग क्या है, शुद्ध कर्मयोग भक्ति योग है। अशुद्ध कर्मयोग क्या होता है, हम फंसे ना उसमें, गलत काम क्या होते हैं जो भक्ति को रोक रहे हैं, उसमें ना फंसे। सारी चीज जाननी पड़ेंगी ना, वरना कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं ये सब अंतर समझना होगा, वरना आगे नहीं बढ़ पाओगे। बट घाना कर्मणोति, मगर इसको समझना बहुत अत्यंत गहन। गहन मतलब क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद? अत्यंत कठिन है, मुश्किल है इसको समझना, इसीलिए भक्तों की जरूरत होती है। सो क्या है कर्म? क्या है प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कर्म क्या है? कृष्ण भावना भावित भक्ति में काम करना, उसको कर्म कहते हैं। जो भक्ति में काम कर रहा है वो कर्म है, भक्ति के कार्य को कर्म कहते हैं। सिंपल, एक्चुअल में अगर कोई पूछे कर्म हो क्या है, तो वो भक्ति है। भगवान के लिए कुछ काम करना, प्रीचिंग, कर्म हो मतलब भगवान के लिए अनेक काम करना, मैंने बताया प्रचार, कुकिंग, वो सही में कर्म हो गए। इसके सिवाय जो कुछ भी कह रहा है कर्म हो मतलब अच्छे व्यक्ति बनो, अपना घर संभालो, वो सब कर्मयोग नहीं है, सब नहीं है कर्मयोग। अगर भगवान के लिए नहीं हो रहा तो वो जो भी क्रिया है भगवान के लिए नहीं होती, वो क्या होती है? विकर्म। विकर्म मतलब गंदे काम। प्रभुपाद लिख रहे हैं विकर्म, आप देख लो यहां पर पॉपर्ट में प्रभुपाद लिख रहे हैं विकर्म। इस भावना अमृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिमाण विकर्म या निषिद्ध कर्म है। विकर्म पाप नहीं होता, पुण्य भी अगर भक्ति का गेन चाह रहा है तो वो विकर्म है। अगर आप गरीब को भी रोटी बांट रहे हो और रोटी बांटते बांटते आपकी माला ही मिस हो गई उस दिन, वो नॉनसेंस हुआ, समझे, यूजलेस है। आगे भक्ति में रुकावट आ गई लो, या आप रोटी बांट रहे हो कि माला भी पूरी हो गई, अब रोज कंबल बांटने का आपकी माला पूरी हो गई, मेरी माला भी हो रही, देखो मैं कंबल भी बांट रहा हूं, तब भी विकर्म है। क्योंकि आप जो रोटी और कंबल बांट रहे हो उसका भक्ति में तो कोई सहायता नहीं है, नहीं भक्ति में क्या फायदा हो रहा है उसका? आपके अपने एजेंडा है, अपने प्लान्स हैं, ना उससे आपका फायदा होगा ना संसार का फायदा होगा। आप कह रहे हो संसार का तो फायदा हो रहा है भाई, भूखे भूखे को रोटी मिल गई, क्या फायदा नहीं हो रहा भैया? फायदा नहीं हुआ है। तभी तो भगवान कह रहे हैं गहना कर्म की गति को समझना बहुत कठिन है। आपने रोटी खिला दी, रोटी खाते क्या करेगा वो? चोरी। पहले तो भूखा था, शक्ति नहीं थी, दिमाग ही नहीं चल रहा था, आपने खिला दिया, अब दिमाग चलने लगा। दिमाग चलेगा तो क्या सोचेगा? खाली दिमाग, शैतान का दिमाग। आपने बेचारे को रोटी खिलाई, उसने खा पी लिया, एनर्जी आ गई, फिर आप घर गए, आपके घर में चोरी मिली, किसने की? पकड़ा गया चोर, वो इसी गरीब ने जिसको रोटी खिलाई थी, जब तक घर पहुंचे वो आपके घर में गया, चोरी कर ली, एनीथिंग कैन हैपन। सो क्या करोगे आप बताओ, क्या करोगे? जो गरीब लोग हैं जब खाएंगे रोटी वोटी तो क्या गंदे काम ही तो करेंगे? ये कौन से धर्मात्मा है जो एनर्जी आ जाएगी तो अच्छे काम करेंगे? नहीं, इसीलिए भगवान ने इनको गरीब बना दिया, क्योंकि पापी है ना, तो शक्ति छीन ली इनसे, पैसे की शक्ति, क्योंकि इनके पास पैसे होंगे तो क्या करेंगे? पाप गबाड़ा करेंगे। तो कर्मों के नियमों ने भगवान ने इसे छीन लिया, और जिनसे भगवान ने छीना आपने उनको दे दिया, मतलब गड़बड़ हो गई नहीं हो गई? गवर्नमेंट ने जेल में डाला भैया चोर चोरी को, आपने क्या पीछे से गए सबको आजाद करे, तो क्या होगा? वो तो आजाद होगा, आपको जेल होगी, सबसे पहले तो आपको पकड़ेंगे, निकाले तूने, तूने क्यों निकाला? अब मुझे तो बहुत दया आ रही थी, बेचारे पत्थर तोड़ रहे थे। अब बेवकूफ हो यार आप, मतलब आपको आपको नियम ही नहीं पता क्या चल रहा है, ये समझे नहीं समझे? इस एग्जांपल से समझ नहीं आ गया? इसलिए संसार के जितने भी फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं, हम दया करेंगे, हम मदद करेंगे, नॉनसेंस है, उनको प्रकृति का नियम ही नहीं पता क्या चल रहा है, उनको नहीं समझ आया, उनको जेल में रखा गया है, उनसे शक्ति छीनी गई है, वरना वो पाप करेंगे, तो छीन लिया आपने, कर दिया, इसको कहते विकर्म। नहीं, तभी कह रहे हैं भगवान घाना है, मुश्किल है नहीं है। चाहे आपके हजार आंसू निकल जाए उस गरीब को देखकर, चाहे आपका हृदय फट जाए, फटने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जो जो शास्त्रों में लिखा है वैसे करना पड़ेगा। वो अपने अपने रोने धोने से काम नहीं चलता, नहीं उससे काम नहीं चलता, नहीं, लॉ लॉ है नहीं? अगर आप लॉ में लॉयर अगर आप जाओगे तो वहां पे आप रो धो लो, कि मैंने खून नहीं किया, देखो प्लीज माफ कर दो, ये कर दो, जज साहब कुछ कृपा करो। जज कहेगा भी एविडेंस का है ये, ऐसे चलता है ना जज। आप किसी भी जज से पूछ लो, मैं ये वहां पे जज थे तो मैंने पूछा था इनसे कि अगर आपको पता है, कई बार जज को भी पता होता है कि गलत पता ही होता है, वो तो हंस रहे होते हैं, वो तो हंस रहे होते हैं, उनको तो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, अब एविडेंस नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि यार कि आपको आपको हृदय में दुख नहीं होता, मतलब आपको तो समझ ही आ रहा है कि बेचारा फंस रहा है, तो आप मतलब दया नहीं आती उस पर? तो कहते हैं भैया वैसा है कि दया व्या तो पहले आती थी, मगर कुछ कर थोड़े ना सकते हैं, हमें तो लॉस ही चलना पड़ेगा, वो चाहे कितने ही रोले, मगर अगर एविडेंस नहीं है तो हमें वही करना पड़ेगा जो लॉ कह रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, समझे? सो ऐसे ही है, भगवान कृष्ण ही कह रहे हैं कि अगर जंगल में आग लग गई आप कितने ही चिल्ला लो बचोगे थोड़े ना, बचने के लिए तो आपको रास्ता ढूंढना पड़ेगा, चिल्लाने से नहीं होता कुछ, चिल्ला चिल्लाने से। या जैसे भक्ति साधक है, नहीं प्रभुपाद ही कहते एग्जांपल कि आप कितने ही चिल्ला लो बच्चा नहीं होता उससे, है नहीं? कोई देखेगा भी डिलीवरी रूम में औरत गई, अंदर से आवाज आई आ भारे बच्चा लेके, मैं वैसे कर लूंगी, अंदर के टेबल पे लेटी आ चिल्लाई, कोई बच्चा नहीं हुआ, ऐसा बच्चा होगा क्या? इमीडिएट करना जरूर ना कुछ होता है। सो वी शुड नॉट डू, इसलिए कर्म मतलब भक्ति कर्म, विकर्म मतलब वो सारी क्रियाएं जो भक्ति के विरुद्ध हैं, वो पुण्य भी हो सकता है ध्यान रखना। और अकर्म मतलब क्या है, कोई बताएगा अकर्म क्या है? बॉडी से इस पपट में देखना कर्म क्या है प्रभुपाल, वो तो विकर्म ही हो गया भक्ति के अगेंस्ट।
अकर्म कर्म के फल,
इस पपट में प्रभुपाद अकर्म लिखी नहीं रहे, अगले पपट में लिखेंगे देखना। अकर्म ऐसे क्या है, इनएक्शन, नहीं इनएक्शन कोई कर्म नहीं करना, मगर अकर्म का मतलब तो ये आता है ना कुछ काम नहीं करना, सो जाना पड़े रहना, नहीं। मगर भगवान यहां पे ये नहीं बता रहे अकर्म का मतलब, ये तो सिंपल मतलब हो गया ना अकर्म, सिंपल मतलब नहीं हो गया अकर्म, सिंपल हो गया ना। मगर भगवान ने पिछले श्लोक में क्या बोला था, कव्यो अपि अत्र मोहिता, 16वें अध्याय में, कि कभी बुद्धिमान, कभी मतलब मैंने क्या बताया था, बुद्धिमान पुरुष भी नहीं समझ पाते कर्म विकर्म और अकर्म क्या है। बुद्धिमान को प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, भगवान क्या बोल रहे हैं, शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, कवि, कवि नहीं समझ पाते, कवि भी कह रहे हैं क्योंकि कवि हर शब्द का डायरेक्ट मतलब, कवि तो इनडायरेक्ट बोलता है ना, इनडायरेक्ट बोलता है ना, बोलता है नहीं कविता में, डायरेक्ट बोलते नहीं, बोलते हैं डायरेक्ट नहीं बोले आते, अगर मैं डायरेक्ट बोलूंगा कविता नहीं होती, वो तुम बहुत सुंदर लग रही हो ये कविता है, तुम्हारा चांद कम खड़ा है, हाँ अब कविता में राइम नहीं होती जरूरी, आप कितनी कविताएं पढ़ लो बिना राइम के चलती है आपको ये कविता है, नहीं कविता का मेन लक्षण है कि उसका मीनिंग परोक्ष होना चाहिए, कुछ और मीनिंग निकलना चाहिए, ये मेन चीज है कविता, कि आप कोई भी काव्यशास्त्र पढ़ लो उसका डायरेक्ट मीनिंग नहीं, कुछ और इनडायरेक्ट मीनिंग निकलना चाहिए, तब वो कविता बनती है। कविताएं पढ़ी हैं आप लोगों ने, हर कविता में राइम नहीं होता, ही वेंट देयर एंड आई केम हेयर, ही किल्ड हिम आई पिल्ड हिम, अब हमने रैम तो बना ली, मगर वो नॉन सेंस है। यू आर यू नो पोएट पोएट्री नो मिस्टर बेर, और कितने में राइम नहीं होती ना, चलता रहता है। सो हर शब्द का अलग मतलब निकालते हैं कवि। तो कर्म शब्द का मतलब क्या निकाला हमने, भगवान क्या कह रहे हैं कर्म शब्द का मतलब, भक्ति, देख लो कवि कवि है नहीं है, वैसे कर्म का मतलब आपका जॉब नहीं। विकर्म का क्या मतलब निकाला, भक्ति के विरुद्ध कर्म करना पाप नहीं। और इसलिए अकर्म का मतलब क्या है, इनएक्शन, नहीं कि बैठे रहो सोते रहो, कुछ और मतलब होना चाहिए, कब कभी की बात हो रही है ना। तो प्रभुपाद अगले श्लोक में बता रहे हैं, अगले 18वें श्लोक में आप देखो अकर्म का मतलब क्या बता रहे हैं, तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं, एक मिनट, तात्पर्य में लिख रहे हैं 18वें अध्याय के, कृष्ण भावना अमृत में कर का कार्य करने वाले व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होते हैं, उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, कर्म फल से उसके कोई लाभ या हानि नहीं होती। अकर्म, आप पिछले श्लोक में अकर्म क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद, मतलब कुछ नहीं लिख रहा है, नहीं। अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना, आप देख रहे हो। निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म करना बंद कर देते हैं कि कर्म फल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग का बाधक ना हो। अकर्म मतलब कि कोई काम नहीं करना। सो जो मायावादी होते हैं ना, निर्विशेषवादी, उनको डर लगता है कि मैं कोई काम करूंगा तो कर्म बंधन में फंस जाऊंगा, इसलिए सारे काम छोड़ के बैठ जाऊं। मायावादी नहीं होते, मायावादी होते, सुना है? तो वो अगर वो मंदिर आएगा ना मायावादी, आप उसको प्रसाद दोगे वो नहीं खाएगा, कहेगा यार ये तो कर्म है, उसको पता नहीं ना प्रसाद है ये तो मीठा है, मीठा खाने से क्या होगा मैं फंस जाऊंगा, यानी टेस्टी टेस्टी है ना, टेस्टी है तो मैं इस स्वाद के चक्कर में। अब मैंने कई मायावादी को देखा है प्रसाद नहीं लेते, नहीं लेते अच्छे मायावादी। सो वो जो कहते हैं, वो कहते हैं भी जो ज्ञानी लोग होते हैं कहते हैं स्वाद के चक्कर में फंस जाएंगे, नहीं प्रसाद भी नहीं लेंगे हम, ये तो बहुत मीठा रसगुल्ला है हम नहीं खाते। तो क्योंकि उनको लग रहा है कि वो कर्मों के बंधन में, इसलिए कर्म छोड़ देते हैं। तो अकर्म मतलब ज्ञानी बन जाना, ज्ञानी। अब आगे कवि आ गया ना, कवि अकर्म मतलब सोना वोना नहीं, सोना और बैठे रहना वो तो उन क्रिया को, तो उन क्रिया को आप तो कौन सी कैटेगरी में जाओगे, अकर्म विकर्म कर्म, तो उसको कौन सी कैटेगरी में डालते हो? टाइम वेस्ट करना, सोना, घूमते रहना, विकर्म में हो गया, भक्ति के विरुद्ध है, नहीं सोने से टाइम वेस्ट हो गया माला नहीं की। अकर्म मतलब ज्ञानियों की क्रियाएं करना, ज्ञानी जो नहीं होते मायावादी सन्यासी, ढोंगी ढोंगी लो सन्यासी, सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए, हम अकर्म कर रहे हैं या मायावादी, हम संसार से हमें कुछ लेना देना नहीं है, तो वो हो गया अकर्म। कर्मों को छोड़ देना, सारे काम को छोड़ देना, भक्ति काम को भी छोड़ देना, इस भय से कि मैं कर्मों के फलों में फंस जाऊंगा। हाँ भी आप एक आप कीर्तन में आओ, किसी मायावादी को बोलोगे भी हम कीर्तन में नहीं आती, देखो म्यूजिक है, म्यूजिक सुनेंगे तो हम फंस जाएंगे, अच्छा अच्छा गाना है ना, फंस जाएंगे, ना अच्छा सुनना, ना अच्छा देखना, ना अच्छा खाना, क्योंकि आप फंस जाओगे स्वाद रूप नाम शब्द में, संसार में यही तो माया है, फंस जाओगे, इसलिए अलग बैठ के ओम समाधि में बैठो। गांधी जी वो तो सब इन्फ्लुएंस है ना इन चीजों से, ये आपके जैन ही कहते हैं ना, गांधी जी जैनिज्म से इन्फ्लुएंस थे, उनकी माँ जैन थी, इसलिए वो अहिंसा परमो धर्मो कॉन्सेप्ट आ गया, कहीं ना कहीं से तो आया गया ना दिमाग में, तो जैनिज्म से आ गया। गांधी जी अच्छा ना खाओ अच्छा ना देखो, वो तीन गांधी जी के तीन मंदिर,
बुरा ना देखो बुरा ना,
हाँ वो जैनिज्म का है, क्योंकि राग आ गया फंस जाओगे, तो उन्होंने सब वहां, मगर उन्होंने जैनिज्म का कॉन्सेप्ट पॉलिटिक्स में यूज कर लिया, मतलब वो और मिक्स हो गया वो थोड़ा फनी हो गया, बट भगवान नहीं कह रहे गांधी जी के तीन मंदिर सही है, बुरा ना देखो बुरा ना खाओ बुरा ना, पहले ये तो पता लगाओ बुरा क्या है भैया। अब मायावादी कहेंगे बुरा ना देखो बुरा ना खाओ, सभी बुरा है संसार में, सब कुछ बुरा है उनके उनके हिसाब से, हमारे से नहीं, भगवान को देखना बुरा नहीं है, भक्ति की क्रियाएं बुरा ही नहीं है, समझ गए। तो अकर्म मतलब में दो तरह के लोग आ गए, एक ढोंगी सन्यासी रघुपाद बात कर रहे हैं इसमें, और एक मायावादी सन्यासी, मायावादी या ज्ञानी लोग सब कुछ छोड़ देते हैं। अब समझ आया नहीं आया अकर्म, इसलिए प्रभुपाद, इसलिए आप देखो श्लोक क्या चल रहा है, कर्मणि कर्मणि क्या है, कर्मणि अकर्म या पश्येत अकर्मणि च कर्म या सब बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त कृत न कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्य में बुद्धिमान है। जो कर्म में अकर्म देखता है, इसका मतलब जो ये देखता है कि काम मैं कर रहा हूं मगर उसका कोई फल, अकर्म मतलब कोई फल नहीं आ रहा। एक्चुअली अकर्म क्या है, एक्चुअली ये जो लोग ज्ञानी सोच रहे हैं ना अकर्म के बारे में, ज्ञानी क्या सोच रहे हैं, अकर्म कर रहे हैं ना वो, भैया कर्मों के फलों का में कर्मों के बंधनों का फल आएगा इसलिए सबको छोड़ के चले जाओ, कर्म मतलब इनएक्शन। मगर एक्चुअली वो कर्म के बंधनों से डर के जो भाग रहे हैं उतने ही कर्म के बंधनों में फंसते जा रहे हैं, जिससे डर के भाग रहे हैं उसी से फंस जाएंगे। यही होता है ना, यही हो रहा है उनके साथ, क्योंकि वो भगवान की शरण नहीं ले रहे। भगवान की शरण नहीं लोगे तो जोड़ोगे या तोड़ोगे कुछ भी करते रहो बंधन में फंस जाओगे। वो कह रहे हैं भाई मैं स्वाद नहीं लूंगा, अच्छा नहीं देखूंगा, अच्छा नहीं सुनूंगा, वरना फंस जाऊंगा इस संसार में। बेटे ऐसा नहीं होगा, तुम गुफा में बैठ जाओ, आंख बंद कर लो, बैठे रहो, कोई प्रॉब्लम जब तक संसार नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। बस एक मेनका आएगी, घुंघरू बजाएगी और क्या होगा, अब अपनी गुफा से सीधा अपने घर में होगी, ये होगा बस। सो वो और बनता जा रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, उसने भगवान, वो भगवान को छोड़ दिया ना उसने, संसार बेकार है, संसार बेकार है, संसार और डर गया, नहीं डर घुस गया उसके संसार का, उल्टा हो गया। जैसे ये नहीं कहते चाणक्य पंडित, नहीं कहते कि जो बहुत सोचता है ना मैं शादी नहीं करूंगा, शादी नहीं करूंगा, शादी नहीं करूंगा, शादी नहीं करूंगा, भागता रहता है दूर स्त्रियों से, सबसे पहले उसी की शादी होती है। समझे नहीं समझे, उसको लग रहा है यार मैं तो बच गया, मगर एक्चुअली वो सोचते 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 उसके माइंड में वही चीज घुस गई, और जैसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो शादी हो जाएगी उसकी, तो बन गया ना, और नहीं बन गया, मतलब जो रह रहा है समाज में उसकी तो शादी हो गई, जो भाग गया वो उसकी और शादी हो गई। लो भाई, इसलिए भागना और रहना कुछ नहीं होता, भक्ति से आप इन चीजों से ऊपर उठते हो। नहीं पर दारेशु मात्रवत, ये शास्त्र में लिखा है भागो मत, हर स्त्री को अपनी माँ के रूप में देखो, ये प्रैक्टिस करो, भागने भूगने की नहीं। समझ गए नहीं समझ गए, जो कर्म में अकर्म देखता है, एक्चुअली कर्म के बंधनों में कौन नहीं फंस रहा, जो भक्ति कर रहा है, जो कर्म कर रहा है वो नहीं फंस रहा, वो एक्चुअली इन एक्शन है, एक्चुअली वो इस संसार में करते हुए भी कुछ नहीं कर रहा। यही है ना, हम इतना सब कुछ कर रहे हैं भगवान की भक्ति प्रचार, मगर एक्चुअली हम कुछ भी क्यों, क्योंकि हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे। इसलिए भगवान कह रहे हैं जो कर्म में क्या देखता है, अकर्म, और जो अकर्म में कर्म देखता है, सन्यासी सब कुछ छोड़ के चले गए, मैं कुछ नहीं कर रहा, मगर एक्चुअली वो बंधन में फंसते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने प्रसाद को ही मना कर दिया। लो भाई, प्रसाद को मना करना सबसे बड़ा पाप है, और नरक में गए और फंस गए वो। एक साधारण आदमी तो उसने प्रसाद ले लिया, जो इसलिए भगवान कह रहे हैं जो कर्म में कर्म अकर्म में कर्म देखते हैं वही मनुष्य में बुद्धिमान है। अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं आ गई, अभी अंडरस्टैंडिंग कभी तो समझेगा, ऑर्डिनरी आदमी नहीं समझ सकता। इसलिए भगवान कह रहे हैं कव्य अपी अत्र मोहित, कभी भी मोहित हो जाते हैं। एक सेकेंड, ये तीन भगवान ने बता दिए श्लोक। अब भगवान आगे बताएंगे कि भक्ति का जो कर्म है, अब जो भक्ति का कर्म है उसका स्वरूप क्या है। हम काम कर रहे हैं नहीं भक्ति में, कितने सारे काम कर रहे हैं। अब जो हम भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं भक्ति का, उसको करना कैसे है, वो है क्या एक्चुअली, उसका प्योर फॉर्म क्या है, कर्म मतलब प्योर फॉर्म नहीं, और फिर कितने तरह के कार्य हैं वो आगे बताएंगे। मतलब प्योर फॉर्म क्या है कर्मयोग का, वो समझा रहे हैं इसके अंदर। अब आगे चलेंगे, अभी तक कोई क्वेश्चन इन तीन श्लोकों में तो पूछ सकते हो।
अभी आपने बोला अकर्म में कर्म देख रहा है, तो आपने वो एग्जांपल दिया कि जो लोग मनुष्य हैं जो निर्विशेषवादी हैं वो छोड़ रहे हैं संसार की गतिविधियों को, वो भी आगे तो ये एक्सप्लेन हो रहा कि वो भी बुद्धिमान मनुष्य है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टिंग,
बुद्धिमान मनुष्य
वैसे भी मनुष्यों में
बुद्धिमान समझते हैं वो, जो अकर्म में कर्म देखता है हाँ तो बुद्धिमान ही तो है। हम ही तो देख रहे हैं कि मायावादी फंस रहे हैं, मायावादी थोड़े ना समझेंगे मैं फंस रहा हूँ,
वो अपने आप को डिटैच करके करना है, वो तो हम देख रहे हैं, तो हम अपनी दृष्टि से सोच रहे हैं या उनकी वो क्या सोच रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पे डिपेंड
है। हम जो सोच रहे हैं उनको देख रहे हैं वो हो रहा है, बुद्धिमान तो वही है हमारा पर्सपेक्टिव।
अच्छा, और आपने यहाँ पे बोला कि प्रभुपाद जी दो एक्सप्लेन कर रहे हैं अकर्म में कर्म, निर्विशेषवादी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ढोंगी गुरुओं की तो बात नहीं हो रही,
ढोंगी गुरु की बात हो रही है यहाँ पर, जो सब कुछ छोड़ देते हैं और क्या हो रहा
है। आपने कहा दो कैटेगरी
हैं, हाँ आप पढ़ो इसके पीछे भी पढ़ो, आगे पीछे इन दो तीन पपर्ट्स में आ रहा है, मिला मुलो के पढ़ोगे ना आ जाएगा। क्या कह रहे हो,
एक तो प्रोजेक्ट सॉरी मैं लेट आया, उबर बने के लिए कुछ समझ में नहीं आया, तो मेरा थोड़ा ध्यान भी नहीं है, मैं पहले इसको पढ़ूंगा अच्छी तरह से, फिर सुनूंगा फिर आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। कुछ समझ में नहीं आया,
सिंपल है, कर्म कर्म है भगवान के लिए भक्ति करना, विकर्म है जो चीज रोक रही है
भक्ति से, में
सारे वो पुण्य भी हो सकता है, पुण्य भी हो सकता है,
पुण्य भी हो सकता है, ठीक है,
ऐसे गरीब का एग्जांपल नहीं है, और वो हमें नहीं समझ आएगा मगर। और अकर्म मतलब जो मायावादी सन्यासी सब कुछ निर्विशेषवादी जो छोड़ छाड़ के चले आते हैं, इस डर से मैं कर्म के फल के बंधनों में नहीं फंसूंगा, मगर वो कर्म के बंधनों के मैं और फंस रहे हैं, भगवान को ही मना कर दिया उसने, लो भाई समझ गए। क्यों नहीं सही है कर्म, हाँ तो सही तो है, क्यों
कॉन्ट्रडिक्टरी देखेंगे कैसे, मतलब अगर हम एज ए न्यूट्रल ऑब्जर्वर देख भी रहे हैं तो अकर्म में कर्म कैसे देखेंगे
यार, अकर्म में जो व्यक्ति सबको छोड़ छाड़ के सन्यासी मायावादी चला गया,
कम मान रहे हैं
जीता तो है,
इसका मतलब ये होगा
कर्म यहाँ पे मतलब, अच्छा आप कह रहे हो कि कर्म मतलब भक्ति, ये कह रहे हो
अकर्म
अकर्म मतलब भक्ति नहीं है,
प्रभुपाद नहीं बता रहे, अकर्म में भी आप भक्ति देख रहे हो।
हाँ मैं समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया, नहीं प्रभुपाद ये नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर अपने आचार्य को साइड में रखो, मैं समझ गया तुम्हें कह रहे, बट प्रभुपाद की पॉपर से चल रहे ना, क्या कह रहे हो,
तो ये
अकर्म में कर्म देखता है, मैं समझ गया वो आप कह रहे हो कि कर्म में अकर्म देखता है, समझ आ गया, अकर्म में कर्म मतलब जो मायावादी सन्यासियों के में भी भक्ति देख रहा है,
वो कैसे देखेंगे,
वो उसकी भी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है
कैसे?
कि अकर्म में यहाँ पे कर्म का मतलब है जो नेक्स्ट कर्म के बारे में कह रहे हैं ना, अब मैं समझ गया भाई, आप देखो ना लोग यही समझते हैं ना, जो मायावादी कर रहे हैं वो भी आध्यात्मिकता कर रहे हैं, समझते हैं ना, यही है ना, मायावादी भी वो भी कह रहे हैं, आप भी वही कह रहे हो, वो भी भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, आप भी भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हो, मगर एक्चुअली बुद्धिमान व्यक्ति को पता है जो अकर्म में कर्म देखता है, जो ये देख रहा है कि भाई जो मायावादी हैं, जो उनका उनका एक्शन है वो भक्ति नहीं है, बाहर से भक्ति लग सकती है वो भक्ति नहीं है, वो एक्चुअली बंधन में फंस रहा है। यहां पे शिला प्रभुपाद जो है कर्म का जो सेकंड कर्म है उसमें मतलब ले रहे हैं कि कर्म के फलों में बंधना, समझ गए नहीं समझ गए, यहाँ पे थोड़े वर्ड्स इंटरचेंज हो रहे हैं, वो दैट आई गॉट योर पॉइंट, जो कर्म के बंधन देख रहा है अकर्म में,
तो कंफ्यूजिंग है
सेकंड, तभी तो कह रहे हैं कव्यो अप्येतरं मोहयता ब्रह्मचारी कमेंट्री में लाना नहीं चाहते, वो तो अलग सेंस में ले रहे हैं, फिर भी क्लियर नहीं हो ना, कर्म क्या है फिर उस सेंस में, अकर्म में कर्म देख रहे हैं आप, कैसे डिफाइन करोगे उसको, वो तो अलग ही अंडरस्टैंडिंग है, वो हम प्रभुपाद का ले रहे हैं ना, ऐसे तो आप प्रभुपाद को कैसे समझे, हमें थोड़ा ना बोल रहे हैं कि रामानुजाचार्य को कैसे समझ रहे हैं, हम बोल रहे हैं प्रभुपाद को कैसे समझे, ये आंसर करो ना, क्वेश्चन ही कुछ और है, अब आप कहो कि हम इसको कैसे समझे कृष्ण को, आप कहो राहुल को समझ लो, ये तो कोई लॉजिकल हो गया ना,
प्रभुपाद जी ने सकाम कर्म
देखे, हाँ यहाँ पे कर्म मतलब जो पहला कर्म है, जो कर्म में अकर्म देख रहा है, पहला कर्म है वो भक्ति है, दूसरा कर्म है जो अकर्म में कर्म को देख रहा है वो सकाम कर्म है, समझ गए, सकाम कर्म मतलब कर्म के बंधनों में फंस जाना, कर्म फलों में बच जाना, कोई भी काम फल की इच्छा से करना, ये इसलिए दो दो अलग अलग मतलब चल रहे हैं कर्म के, समझ गए नहीं समझ गए, दो अलग अलग मीनिंग है कर्म के, दो अलग अलग मीनिंग चल रहे हैं,
प्रभुपाद जी ने डिफाइन नहीं किया,
प्रभुपाद ने नहीं किया, हाँ तो बट मीनिंग से समझ आ गया,
तात्पर्य में डिफाइंड नहीं है,
ठीक है, तात्पर्य में डिफाइंड नहीं है, नहीं
तात्पर्य में ये लिखा है कि जो कर्म फल के बिना अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के बिना कर्म करता है वो अकर्म है, तात्पर्य में प्रभुपाद
कर्म के ऊपर
नहीं, कहाँ बोल रहे हैं
काम कर्म के ऊपर
डिस्कशन, कहाँ बोल रहे हैं, कोई नहीं बोल रहे, कुछ नहीं बोल रहे, एनी बार कोई क्वेश्चन है तो ढूंढ के बता दें।
अगर जो भी ज्ञान के रास्ते में अग्रसर होता है जब कर्म की दशा होता है तो सारे कर्म के रास्ते में जाते हैं।
एक मिनट यार, आप लोग अब देख लो। हाँ, क्या
जैसे कोई भी बंदा ज्ञान के रास्ते में बढ़ता है, गीता पढ़नी शुरू करता है, तो शुरू शुरू में वो अकर्म के रास्ते में चलता है, उसको लगने लगता है कि सब कुछ छोड़ दो। तो अगर उसको सही गाइडेंस ना मिले तो 99% लोग तो अकर्म के रास्ते में चल रहे हैं,
तो फंस जाएंगे। सब कुछ छोड़ दो, क्यों छोड़ दो भी?
नहीं, ऐसा सब तो नहीं सुन
पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? हाँ, सब लोग नहीं छोड़ते, मोस्टली तो करते ही रहते हैं।
ऐसी फीलिंग आती है
क्या क्या
ये इस टाइप की जब गीता पढ़ते हैं
कि छोड़ दो सब कुछ?
मतलब क्या कहते हैं कि स्वाद छोड़ दो, ये छोड़ दो, जैसे ऐसी इंटरप्रिटेशन बननी शुरू हो जाती है।
छोड़ने में खराब नहीं है स्वाद, मगर पॉइंट ये है कि हम स्वाद जो छोड़ रहे हैं वो भगवान की संतुष्टि के लिए छोड़ रहे हैं, है नहीं? अगर स्वाद लेने से भक्ति बढ़ेगी तो स्वाद नहीं ले लोगे आप? नहीं। अगर मान लीजिए आपने एक अच्छा सा प्रसाद मिला, आपको आपने प्रसाद खाया, पेस्ट्री सपोज आपको दे दी, आपने पेस्ट्री खाई, आपको बहुत टेस्टी लगी, फिर आपके माइंड में फीलिंग्स आई कि कृष्णा कितने अच्छे हैं, डिवोटीज कितने अच्छे हैं, कितना अच्छा बनाया है, भगवान कितने अच्छे हैं, कितना सुंदर प्रसाद है। अच्छा नहीं है फीलिंग? ये फीलिंग अच्छी है तो हमारी भक्ति बढ़ गई, तो खा लो पेस्ट्री। ऐसी होता है, नहीं होता है? तो खाते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीरियसली। तभी भगवान कह रहे कव्य पितरम हुए था, किसको समझना बहुत, तभी विवेकानंद बेवकूफ बन गया। विवेकानंद सारे घूमा इंडिया में, उसने भी किताब में लिखा है कि ये भक्त प्रसाद खाते रहते हैं अच्छा अच्छा बनाकर, ये नॉनसेंस है, ये योग है क्या है? उनके बस की बात नहीं है समझना। वो विवेकानंद नहीं, वो अविवेक निरानंद, सॉरी टू से दिस बट ऐसे ही है। बट द पॉइंट इज, प्रसाद खाने से अगर आपके सेंटिमेंट्स बढ़ रहे हैं खा लो, कोई नहीं, सब महाप्रभु खाते थे। बट उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि प्रसाद खाते खाते उस टेस्ट में भगवान को भूल ना जाओ, वो आपको पता है, वो मैं नहीं बता सकता, ना कोई गुरु बता सकता है। आपको देखना है कि आप अपने आपको चीटिंग कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मगर हम ये नहीं कह रहे टेस्ट मत लो। भगवान कह रहे हैं भक्ति के जो अनुकूल है कर लो, अगर घर में रहने से भक्ति बढ़ रही घर में रहो। किसने कहा बेवकूफ ने घर छोड़ने से? कौन कह रहा है? अगर सब डिवोटी हैं घर में बहुत अच्छा है, अगर आपकी भक्ति बढ़ रही है, घर छोड़ने से भक्ति कम हो रही है तो क्यों छोड़ रहे हो? क्या क्या जानबूझ के क्या सर में कुल्हाड़ी मारनी है, क्या सड़क पे घूमना है, दर दर की ठोकरें खानी है? नहीं, यू गेट माई पॉइंट। इसलिए भक्ति राज्य बिल्कुल अलग है, यू हैव टू डिसाइड ऑन योर ओन मेरी भक्ति कैसे बढ़ रही है। इसलिए भक्ति में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चीटिंग, कपट। भगवान कह रहे हैं मुझे कपटी अच्छा नहीं लगता, अगले श्लोक में यही आ जाएगा, सीधा यही आ रहा है भगवान। मैं बता रहा था ना, कर्म करने का स्वरूप बता रहे ना, असली कर्मयोग क्या है, असली क्या है कर्मयोग, साइकोलॉजी कैसी होती है। कपट सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने को चीट मत करो। अब ये तो खुद ही बता सकते हो ना कि स्वाद लेने से मेरे सेंटिमेंट्स आ रहे हैं या मैं भूल रहा हूं भगवान को, वो कपट होता है। अपने कुछ करके अपने आप को झूठ बोलते रहना, नहीं नहीं ऐसा थोड़ा है, मैंने तो पेस्ट्री खाई थी, मुझे तो भगवान का याद था, उस टाइम भूल गया, बाद में कह रहे हो अरे सब याद था, उसमें क्या है, नहीं चीटिंग है उससे। तो कपट नहीं होना चाहिए बस, वो बिल्कुल अगले श्लोक में आ जाएगा, इमीजिएट अगले श्लोक में भगवान ने पहली बातें कह दी। गॉट माय पॉइंट? भक्ति अलग है बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो माया ज्ञानी होते हैं, पैसे नहीं चाहिए हमें, पैसे नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? या पैसे लेने से अगर सेवा हो रही है पैसे ले लो, पैसे लेने से आप फंस रहे हो तो वो बात अलग है, मत लो। सो समझ गए श्लोक को? समझ गए? नहीं समझ गए?
तो सकाम कर्म जो होता है वो भगवान में,
सकाम कर्म मतलब ऑर्डिनरी काम
जो हमें इस संसार में
जो इच्छाओं से किया जाता है, हाँ, जो बंधन में बना देता है बस। सो दो अलग अलग सेंस ले रहे हैं, मीनिंग में आ जाता है।
कल कॉन्फ्रेंस ही गया था, डेढ़ बजे लंच का टाइम था, दो सवा दो
बजे। एक मिनट, क्या क्वेश्चन क्या है पहले पूछो, क्योंकि ये थोड़ा कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते
हैं।
हाँ बताओ।
एक तो प्रसाद अलग था, कल सवा दो बजे आ रही है तो मेरा बड़ा अंदर से एक तो मुझे भूख लगे, मेरा मन कह रहा प्रसाद खाऊं प्रसाद खाऊं, कब चालू करेंगे कब चालू करेंगे, दिमाग में यही चल रहा था आधे घंटे से, वो ठीक है या नहीं है? प्रसाद चालू कर दो।
वेल, वो कॉन्फ्रेंस किस बात की थी? ऑर्डिनरी थी, इस्कॉन की थी। अच्छा, तो आपका मन करता है प्रसाद का, तो ठीक है गलत है? वेल आई मीन टू से आपको क्या लगता है ठीक है कोई खराबी थोड़ा ना प्रसाद के बारे में सोच रहे हो ना दैट्स ओके अगर प्रसाद के बारे में सोच रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है खाने के बारे में नहीं सोच रहे ना यू नॉट थिंकिंग ऑफ फूड और प्रसाद लेके क्या करोगे आप फिर भक्ति तो करोगे वो तो सिर्फ चौपाटी में होता है ऐसे मतलब इट इज देयर आइडिया ये शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा शास्त्रों में लिखा है कभी भी गेस्ट को खिलाए बिना नहीं लेना चाहिए ये उनका स्पेकुलेटेड आइडिया सॉरी टू से दिस इट इज कभी धर्म में नहीं होता पहले खा ही नहीं सकते सीधा नर्क जाओगे पहले तो सारे अतिथियों को खिलाना होता है फिर बचे तो खा लो वरना भूखे रहना है ये रियल सर्विस है अब ये क्या मतलब है यार आप भूखे भी नहीं रह सकते पूरे दिन भूखे नहीं रह सकते आप क्यों खिलाना है अब जब सिर्फ जूस पिला दो चलो अगर एनर्जी चाहिए पूरा बैठ के खाओ पहले पेट भर के फिर बांट रहे क्योंकि भावना है कोई भावना है पहले जमाने में तो लोग पहले जमाने में जो पंडाल चलता था पंगत चलती थी लोग खिलाते थे दो दो दिन नहीं खाते थे अब वैष्णो देवी चले जाओ ये कर्मी लोग जो बांटते हैं लंगर वो नहीं खाते अब देख लो कहाँ खाते हैं भूखे रह जाते हैं फाड़ते हैं सब फिर पता नहीं खाते हैं फिर उसके बाद रात को तब संतुष्टि आधा मिलती है पता है वो धर्म है तब लगेगा कि आपने सेवा की है तो ये सब इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इस कौन में भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं जो गड़बड़ है हमें शास्त्रों से देखना है क्या है स्पेकुलेशन नहीं कर सकते फिर वो एलिवेशन ही नहीं होगी हमारी अपने मन से चलते रहे हाँ बस सिंपल है हाँ शायद ये कहते हैं कि भी मान लीजिए जो सर्फ कर रहा है वो सोचेगा खत्म हो जाएगा तो सोचता रहेगा कि खत्म हो जाएगा तो अपने लिए बचा लेगा तो फिर उसका तो कम देगा या तो उसकी चेतना खराब हो जाएगी मगर दिस इज अ रॉन्ग ट्रेनिंग ट्रेनिंग तो होनी चाहिए कि खत्म हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं तुम्हारा सैक्रिफाइस है ये यज्ञ हो रहा है ये कोई बांट नहीं रहा है ये सैक्रिफाइस है तुम्हारा खत्म हो जाए है नहीं तो आगे आ जाएगा ये इस अध्याय में ये सारी चीजें आ रही हैं भगवान ने अध्याय ही बोला है इसलिए क्योंकि भगवान को पता है ऐसी चीजें क्या कर रहे हैं सो दैट्स द प्रॉब्लम देयर सो यू हैव टू बी कोई क्वेश्चन है ये बताओ फिर
जो अगर नहीं खिलाते तो प्रेत खाते हैं अगर आप भगवान को चला मतलब भगवान को नहीं खिलाते प्रसाद नहीं खाते तो अगर आप खाना खाते बिना ये सैक्रिफाइस के तो प्रेत खाना खाते हैं आप नहीं खाते ऐसा कुछ
प्रेत खाना खाते हैं
ऐसे ये वर्ड लिखे
कुछ होता है मैंने भी पढ़ा था
जरूर जी इसमें आपने बताया कि गरीब अपने पिछले जन्म का वो पाप जो है
भोग भगत रहे
तो मगर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उनको कोई एहसास तो है नहीं किसी को पता ही नहीं है तो वो तो कह रहे हैं भाई ये तो ऐसा ही है सोसाइटी ऐसी है ये अमीर इसलिए बने क्योंकि ये गलत है हम तो देखो सही है इसलिए हम गरीब बने उनको पिछले जन्म का एहसास भी नहीं कराते भगवान कि भाई तुम्हें गरीब इसलिए बनाए गड़बड़ करके आए थे
अगर भगवान एहसास दिला देंगे उनको कि तुम गड़बड़ करके आए थे इसलिए गरीब बने हो तो भगवान के एंटी हो जाएंगे
अभी कौन से
भगवान के बिल्कुल ही एंटी हो जाएंगे
कोई गरीब नहीं मानता किसी को कह दो ना तो उल्टा मानते नहीं कोई भक्ति नहीं
है वही तो बात है भगवान को पता है क्यों बुला दिया वो तो बिल्कुल ही रिवोल्ट कर देंगे ना यार हमने गलत कर दिया हमें ऐसी हालत में डाल दिया क्या बकवास है और गुस्सा हो जाएंगे तो भगवान भुला देते हैं वी नाउ यू हैव टू फिगर आउट योर सेल्फ पढ़ो और सही नॉलेज से वरना वो पता लग गया तो अपने गलत आइडिया से गलत कंक्लूजन निकालेंगे ना तो इसलिए नॉलेज लेके फिर अगर जो इसलिए जो ज्ञान आता है उनको पिछले जन्म का याद आ जाता है सब कुछ आ जाता है ना जो सिद्ध हो जाते हैं उनको आ जाता है क्योंकि वो सही नॉलेज से देख ले होते हैं फिर उनको फिर वो भगवान के एंटी नहीं होते
और वो दान है एक वो भी दान होता है जैसे हमने घर बना लिया या कुछ भी घर में बच्चा पैदा हुआ तो वो ट्रांसजेंडर्स आ जाते हैं वो जबरदस्ती ही पढ़ के पीछे पैसे ले जाते हैं तो वो क्या दान
वो तो सोसाइटी में वो धर्मशास्त्रों में लिखा है
देना है ना
धर्मशास्त्र में लिखा है जो ट्रांसजेंडर होते हैं ना हिजड़े शास्त्र में लिखा उनको देना अच्छा रहता है वो इसलिए प्रथा चलती आ रही है ना अब लोगों को पता नहीं लग रहा तो लोग फिर कहते हैं यार ये क्या है, तो छीन के ले गए। शास्त्रों में जो लिखा है वो चैतन्य महाप्रभु के टाइम आए थे ये लोग, और उनके फादर ने दिया था प्रथा है। तो उनको आप प्रसाद दो, उनसे उनसे भी हरि हरि नाम करा लो, कुछ गाएंगे तो सही, गाते तो है, चलो चलो कीर्तन हरे कृष्णा करके दिखाओ, वो गा लेंगे आप, अच्छा हो जाएगा, उनको भक्ति मिल गए, प्रसाद भी हो गया, खुश भी, थोड़े पैसे भी हो गए, खुश हो गए, चले गए, आशीर्वाद भी दे, चलो हो गया। ये कौन कह रहा है
ऐसा, सॉरी नॉट गंदरवास बट किन्नराज,
कौन कह रहा है
ऐसा कुछ
नहीं, ये कहाँ पढ़ लिया आपने, ये कहाँ पढ़ा है आपने, वो देवी देवता है ये इकड़े अभी, हाँ हनुमान जी के वो है, उनको किन्नर कहते हैं, ये कहाँ का कहाँ पढ़ लेते हैं, मतलब कहीं कहीं ऐसे कहाँ,
मतलब मेरी स्पेकुलेशन,
तो ये बोलो ना पहले, पहला स्टेटमेंट बोलो कि मुझे ऐसा लगता है,
मैं वो पूछ ही रहा हूँ, मैं तो शास्त्र
पूछ रहे थे। ओके लास्ट क्वेश्चन, अदरवाइज आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर नाउ।
जजों को पाप नहीं चढ़ता, जो जज ये कर रहे हैं, इनको पाप नहीं चढ़ता,
जज कौन,
जज
लॉ से चल रहा है, उनको कुछ नहीं,
मगर वो लॉ तो भगवान का, तो लॉ पे नहीं चल रहा,
भगवान का लॉ नहीं है, बट लॉ तो बना हुआ है, वो क्या कर सकते हैं बताओ, बट ये है कि जो भक्ति भक्ति से कुछ ले नहीं, तो वैसे ही वो फंस रहे हैं, भक्ति के एंटी जो कुछ भी, भक्ति को छोड़ के कुछ भी करोगे तो बंधन में फंसोगे, वो वैसे ही फंसते जा रहे हैं, क्या
करते,
वो ही तो गलत है, गीता रख के सब गलत बोलते हैं।
राइट और रॉन्ग भी नहीं है, क्योंकि जो इंडिया में राइट है अमेरिका में रॉन्ग है, कहते राइट और रॉन्ग भी नहीं थे।